हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। माधुरी कबीर से नाराज थी और बस उसकी असिस्टेंट बनकर ही रह गई थी। कबीर ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर माधुरी ने ये कहकर बात टाल दी कि उसे उसका सॉरी नहीं चाहिए। वो खुद धृति की बेगुनाही साबित करेगी और उसके बाद उसे और अर्णव को अपनी गलती पर पछतावा होगा, पर तब उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। कबीर और माधुरी के बीच अब कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी, जिसके बीच उनका बेनाम रिश्ता दम तोड़ने लगा था। धृति इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थी। बीती रात माधुरी धृति के साथ नहीं रुकी थी, क्योंकि अर्णव आने वाला था। धृति को अकेले बड़ी मुश्किल से नींद आई और जब सुबह उसकी आंख खुली तो आंखों के सामने अर्णव का हैंडसम सा चेहरा आ गया। इसे देखते ही धृति चौंकते हुए उठकर बैठ गई। कुछ सेकंड तक वो आंखें फाड़े अचंभित सी अर्णव को यूं देखती रही, मानो किसी अजूबे को देख लिया हो। फिर उसकी निगाहें अर्णव के चेहरे पर ठहरी। सोते हुए कितना शांत लग रहा था हो। हैंडसम तो था ही, पर सोते हुए काफी डिसेंट सा लग रहा था। चेहरे पर सुकून के भाव मौजूद थे। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो बहुत क्यूट सा लगने लगा था। उसकी घनी पलकें घने बादलों जैसी लग रही थीं। पतले पतले हल्के गुलाबी होंठ बिल्कुल चेरी जैसे लग रहे थे। धृति उसके आकर्षक फेशियल फीचर को आज बड़े ही ध्यान से देखने लगी। 3 दिन बाद आज वो अर्णव को देख रही थी और जाने क्यों, पर इस अर्णव पर से वो अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही थी। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, उसने अपनी आंखें भींच ली और हड़बड़ाहट में बेड से नीचे उतरने लगी। पर उसकी खराब किस्मत से उसका पैर ब्लैंकेट में उलझा और वो ब्लैंकेट समेट मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई, जिससे अर्णव हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा। वो उठकर तो बैठ गया, पर अब भी उसकी नींद उस पर हावी थी। आंखें बमुश्किल ही खुल रही थीं। दिमाग एकदम सुन पड़ा था। शायद रात को देर से सोने के कारण उसके माइंड को एक्टिव मोड में आने में समय लग रहा था। वो उनींदी आंखें बमुश्किल खोले अलसाया हुआ सा आसपास देखते हुए जानने की कोशिश कर रहा था कि तूफान आखिर आया कहाँ। जब उसके कानों में धृति की दर्द भरी आ पड़ी तो एक झटके में उसकी सारी नींद काफूर हो गई और वो एकदम अलर्ट मोड में आ गया। उसने आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई तो नजर जमीन पर बैठी धृति पर पड़ी, जो अपनी कोहनी को मसल रही थी। उसका गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया था और आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं। चेहरे पर दर्द के भाव मौजूद थे। जमीन पर बैठी धृति को देखकर अर्णव सब समझ गया और तुरंत ही बेचैनी से बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। पर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। जिस चेहरे पर धृति को देखकर चिंता के भाव उभर आए थे और व्याकुलता झलकने लगी थी, अब वहाँ कठोर भाव मौजूद थे, जैसे धृति को दर्द में देखकर उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। कुछ सेकंड पहले तक जिन आंखों में धृति की फिक्र और परवाह नजर आ रही थी, उन आंखों में धृति के लिए नफरत झलकने लगी थी और चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे मानो कह रहा हो कि वो यही डिजर्व करती है। धृति अपनी कोहनी को सहला रही थी जब उसके कानों में अर्णव के विष भरे कड़वे शब्द पड़े। पहले ही इतनी नीचे गिर चुकी हो कि अब उठना संभव नहीं, अब और कितना नीचे गिरना चाहती हो तुम? धृति ने उसकी आवाज सुनकर चौंकते हुए निगाहें आवाज की दिशा में घुमाई तो उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा अर्णव नफरत भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा था। धृति उसकी बातों और इस नफरत की वजह आज फिर नहीं समझ सकी और आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखों से हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। अर्णव किसी मदमस्त हाथी जैसे जमीन को अपने पैरों तले रौंदते हुए उसके पास आया और अपना एक घुटना फर्श पर टिकाते हुए उसके पास बैठ गया। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं यहाँ तुम्हें उठाने आया हूँ? अगर ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया है तो उसे अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि मैं गिरी हुई चीजों और गिरे हुए इंसानों को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे नहीं करता। अर्णव ने गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहा। उसकी डरावनी काली आंखें धृति को ही घूर रही थीं। अर्णव ने अपनी बात कही, फिर हीन निगाहों से उसे देखने के बाद उठकर सीधे बाथरूम में घुस गया और दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि बाहर बैठी धृति भय से कांप उठी। उसकी आंखों में भरे आंसू उसके रुस्सारों को भिगाने लगे। धृति रानी ने बड़ी ही बेरहमी से अपने आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछ लिया और सीधे कमरे से बाहर चली गई। बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़ा अर्नव लगातार अपने चेहरे पर पानी मारे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने से धृति का दर्द भरा चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। जाने क्यों, पर उसका मन बेचैन था, तड़प रहा था। अर्नव कुछ पल यूं ही अपने चेहरे पर पानी मारता रहा, फिर उसने अपने माथे पर बिखरे भीगे बालों को अपनी हथेली से पीछे किया, फिर अपनी दोनों हथेलियों को स्लैब के कॉर्नर पर कस दिया और शीशे में अपने अक्स को देखते हुए गुस्से से बोला, होश में आ अर्नव, क्या करने जा रहा था आज तू? क्यों उसकी तकलीफ देखकर तू सब भूल गया? क्यों उसे दर्द में देखकर व्याकुलता से उसकी तरफ बढ़ने लगा? क्यों उसके लिए इतना बेचैन हो रहा है? क्यों उसे वो कड़वी बातें बोलते हुए तेरा मन दुखी था? वह तेरी ये परवाह डिजर्व नहीं करती, वह तेरी नफरत के ही काबिल है। भूल मत, उसके कारण तूने अपने भाई को खोया है। आज तेरे परिवार में अगर सब दुखी है तो उसकी वजह ये लड़की है, और तुझे उससे हर उस दर्द, हर उस तकलीफ का बदला लेना है जो उसने तेरे भाई, तुझे और तेरे परिवार को दी है। तू इतने आगे आकर यूँ कमजोर नहीं पड़ सकता, उसकी झूठी मासूमियत के जाल में नहीं फंस सकता। भूल मत कि उसके कारण अपने परिवार की आंखों में एक बार फिर आंसू देखे हैं तूने, उन्हें दर्द और तकलीफ में देखा है, और धृति को भी वही दर्द और तकलीफ से गुजरना है। वो सिर्फ और सिर्फ तेरी नफरत की हकदार है। अर्नव अपनी नफरत खुद को याद दिला रहा था, पर दिल था कि धृति की चिंता में व्याकुल था। उसके दिल और दिमाग के बीच वो बुरी तरह उलझ गया था और खुद पर भी खींच उठा था। अर्नव काफी देर तक अंदर बंद खुद को सब याद दिलाता रहा, फिर बाहर आया तो धृति कमरे में नहीं थी। अर्नव भी सीधे जिम में चला गया। कुछ देर बाद धृति उसके कपड़े और जरूरत का सब सामान निकालकर नहाने चली गई। जब तक अर्नव वापस रूम में आया, धृति वहां से जा चुकी थी। सीधे नाश्ते के वक्त उसे धृति दिखी, पर तब भी उनके बीच कोई बात नहीं हुई। आज फिर दोनों अलग अलग ही ऑफिस गए, जहां धृति उसके सुबह के रूखे व्यवहार और बेबुनियाद इल्जामों, चरित्र पर उठे सवालों के कारण आहट थी, वहीं अर्नव अपने जज्बातों में बुरी तरह उलझ चुका था। कहीं न कहीं दोनों का दिमाग एक दूसरे में उलझा हुआ था और दोनों ही कुछ विचलित, व्याकुल और दुखी थे। धृति तो ऑफिस आते ही उन सब बातों को अपने दिमाग से निकालकर काम में पूरी तरह से मग्न हो गई, जबकि दिल और दिमाग के बीच छिड़ी जंग को विराम देने में अर्नव को काफी वक्त लग गया। कड़ी मशक्कत और खुद को खूब समझाने के बाद अर्नव ने धृति के ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और काम में पूरी तरह से डूब गया। अर्नव कुछ काम कर रहा था जब उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। उसने लैपटॉप पर निगाहें टिकाए हुए ही कहा, कम इन। दरवाजा खुला और दो सकुचाते कदमों ने कैबिन के अंदर कदम रखा। अर्नव अब भी लैपटॉप पर निगाहें गड़ाए बैठा था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर सरपट दौड़ रही थीं। तभी अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी और कीबोर्ड पर दौड़ती उसकी उंगलियां एकाएक हवा में ठहर गईं। गुड मॉर्निंग सर, आवाज धृति की थी। इसे सुनते ही अर्नव ने चौंकते हुए सामने की ओर निगाहें उठाई तो हाथ में एक बड़ा सा बुके लिए धृति खड़ी थी। अर्नव पहले तो धृति को यहाँ देखकर हैरान था, पर जब उसने उस बड़े से बुके को देखा तो और ज्यादा चौंक गया।
क्या है ये बुके लेकर तुम मेरे कैबिन में क्यों आई हो? अर्नव की आवाज हमेशा जैसी सख्त और रौबदार थी। उसका सख्ती से किया सवाल सुनकर धृति ने बुके उसकी ओर बढ़ाते हुए तुरंत ही जवाब दिया, सर ये बुके मिस्टर बंसल ने भेजा है आपके लिए। बुके के साथ उनकी आज की पार्टी का इनविटेशन भी आया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकालकर आप अपनी पार्टनर के साथ पार्टी में जरूर शामिल हों। अर्नव ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर भौहें उचकाते हुए बोला, बाकी सब तो ठीक है, पर पार्टनर के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने कहा है, ये तुम्हारी इच्छा है मेरे साथ इतनी बड़ी पार्टी में जाने की? एक बार फिर अर्नव ने इल्जामों का तीर उस पर छोड़ा, जो सीधे धृति के दिल को चीरते हुए बाहर निकल गया। इस बेबुनियाद इल्जाम को सुनकर धृति के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। उसने फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया, मैं अपनी औकात और आपकी जिंदगी में अपनी जगह बहुत अच्छे से जानती हूँ सर। ऐसी बड़ी बड़ी हाईफाई पार्टियां मेरे काम की जगह नहीं, और नहीं मैं उन जगहों के लिए बनी हूँ। मेरे मन में आपके साथ कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है, और न ही पार्टनर से मतलब मेरा आपके साथ जाने का था। उस पार्टी का थीम है कि सबको पार्टनर के साथ ही आना है, और मैंने आपको ये जानकारी दी ताकि वहाँ अकेले जाने पर आपकी इंसल्ट न हो, सबके सामने आपको एम्बैरेस न होना पड़े। मैंने बस अपना काम किया है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, और यकीन मानिए मेरे दिल में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं। उन अमीर लोगों के बीच जाने का कोई शौक नहीं मुझे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर अपना काम किया है, अब आपकी मर्जी है जिसे चाहे अपने साथ लेकर जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि अगर मैं उस पार्टी में जाता हूँ तो मुझे अपने लिए पार्टनर अरेंज करनी होगी। अर्नव ने धृति की पूरी बात सुनने के बाद तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, जिस पर धृति ने तुरंत ही सर हिला दिया, जी। अर्नव उसका जवाब सुनकर कुटिलता से मुस्कुराया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक नजर आने लगी। शायद उसके शैतानी दिमाग में कुछ खतरनाक आइडिया आ चुका था, जिसका शिकार हमेशा की तरह एक बार फिर धृति होने वाली थी। अर्नव ने अपनी दोनों बाहों को मोड़कर सर के पीछे लगाया और एकदम रिलैक्स होकर बैठ गया। फिर उसने धृति पर नजरें टिकाते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम चल रही हो मेरे साथ पार्टी में। अर्नव की बात सुनकर धृति बुरी तरह चौंक गई। उसने हड़बड़ाहट में नजरें उठाकर अर्नव को देखा और हैरानगी से जोर से चीखी, मैं? धृति को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। उसे तो ये था कि जितनी नफरत अर्नव उससे करता है, जैसे उनके रिश्ते को छुपा कर रखता है, वो कभी उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाएगा। इसलिए धृति अचंभित सी आंखें फाड़े अर्नव को देखने लगी थी, जो उसके रिएक्शन से बेअसर एकदम रिलैक्स होकर चेयर पर पसर कर बैठा हुआ था। अर्नव अब सीधा होकर बैठ गया, फिर गहरी निगाहों से धृति को देखते हुए कठोर स्वर में बोला, हाँ, तुम, अब तुम मेरी पीए हो तो तुम्हारे अलावा और कौन जाएगा मेरे साथ इस बिजनेस पार्टी में? पर मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, धृति ने तुरंत ही उसके साथ जाने से इनकार किया। उसके चेहरे पर इस वक्त घबराहट के भाव मौजूद थे और आंखों में डर समाया था। शायद अर्नव के साथ पार्टी में जाने का सुनकर उसके मन में भय उत्पन्न हो चुका था कि वहां जाकर कहीं अर्नव उसके साथ कुछ गलत न करे। जैसे अकेले में उसे जलील करता है, वैसे भरी महफिल में उसकी इज्जत की धज्जियां न उड़ा दे। जैसे यहां ऑफिस में सब उसके बारे में इतनी घटिया बातें करते हैं, वहां वो सबके बीच बदनाम न हो जाए। धृति यही सब सोचकर परेशान हो रही थी, जब एक बार फिर अर्नव की कठोर आवाज उसके कानों से टकराई, तुम्हारे पास इनकार करने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम यहाँ मेरे लिए काम करती हो और मेरे हर ऑर्डर को मानना ही तुम्हारा काम है। पर तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वहाँ मेरे साथ सिर्फ मेरी पीए होने की हैसियत से जा रही हो, वाइफ बनकर नहीं। बस कुछ देर रुक कर हमें वापस आ जाना है। धृति पहले तो स्तब्ध सी अर्नव को देखती रही, शायद उसके चेहरे से ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब अर्नव उसके साथ क्या करना चाहता है। पर इतना आसान नहीं था अर्नव की मर्जी के बिना उसके इरादों का पता लगाना। धृति के हाथ नाकामयाबी ही लगी, जिससे वो मायूस हो गई। उसने सर हिला दिया और बुके वहीं टेबल पर रख कर वहां से चली गई। अर्नव तब तक उसे देखता रहा जब तक कि धृति उसकी आंखों से ओझल न हो गई। उसके जाने के बाद अर्नव एक बार फिर अपनी दोनों बाहों को मोड़कर सर के पीछे लगाते हुए चेयर से टिककर इत्मीनान से बैठ गया और कुटिलता से मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, अब आएगा असली मजा। आकाश को ऐसे ही पार्टी में जलील किया था ना तुमने, अब भरी महफिल में तुम जलील होगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि कैसा महसूस होता है जब भरी महफिल में तुम्हारा मजाक बने, कैसा लगता है जब भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती की जाती है और सब हंसते हैं तुम्हारी हालत पर। अर्नव के मन में एक बार फिर कुछ कड़वी यादें कौंद गईं और उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा, नफरत, बेबसी जैसे कई भाव उभर आए। आंखों में बेइंतहा नफरत और गुस्सा झलकने लगा, साथ ही हल्की नमी भी तैर गई। जाने कौन सा दर्द था जो उसे इस कदर तड़पा रहा था, और वो इस नफरत में अंधा होकर इस कदर नफरत करने लगा था धृति से। जाने अब आगे क्या होने वाला था, आखिर करने वाला था वो अर्नव, और धृति इस अनचाही मुसीबत का सामना कैसे करने वाली थी।